अध्याय 5 कलीसिया एक प्रशिक्षण केंद्र समय की मांग। आज सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत कलीसिया को ऊपर उठाने की है वह ये है कि बुद्धिमान मजदूर दूसरों को अच्छा काम करने और योग्यता बढ़ाने का बड़ा काम करें। ऐसी योग्यता जो गुरु के काम को और शिक्षा को बढ़ाने में इस्तेमाल हो। प्रभु के सेवकों को काम सौंपे जाने की बढ़िया सुनियोजित योजना बनाकर सारे कलीसियाओं को भेजी जानी चाहिए। छोटे बड़े सभी कलीसियाओं के सदस्यों को निर्देश दिए जाएं कि चर्च की बढ़ोतरी के लिए किस प्रकार प्रयास करना है और अविश्वासियों के विश्वास को भी बढ़ाना है। प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों की ही जरूरत है। वे जो जाकर कलीसियाओं से मिलते हैं उन्हें उन विश्वासी भाई बहनों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर तरीके बताने चाहिए कि प्रचार कार्य पूरी तरह से किया जाए। परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया में अनुशासन हो और उसके सदस्य जगत में वचन की रोशनी फैलाने के लिए पूरी तरह फिट व योग्य हों। ऐसी शिक्षा लोगों को दी जानी चाहिए जो कि सैकड़ों लोगों को इस प्रकार तैयार कर दें कि वे अपना बहुमूल्य गुण लोगों में बांट सकें, उन्हें सिखा सकें। इन गुणों के उपयोग से मनुष्यों को उनके विश्वास व परमेश्वर पर भरोसा रखने में पूरी तरह से तैयार हों तथा एक शुद्ध मन, शुद्ध व पवित्र जीवन तथा भ्रष्टाचार रहित सिद्धांतों का पालन करें। तब कहीं प्रभु यीशु की वह महान भलाई का काम पूरा होगा। हर एक कार्यकर्ता को पूरी तरह से समझदार और योग्य होना चाहिए, तभी वह प्रभु यीशु की तरह उच्च स्तर की सच्चाई लोगों तक पहुंचा सकता है। इस बेहतरीन योजना को पूरा करने के प्रयास में बिल्कुल भी देरी नहीं होना चाहिए, जिसके द्वारा कलीसिया के सदस्यों को शिक्षित किया जाना है। सबसे बड़ी सहायता जो हमारे लोगों को दी जा सकती है वो ये है कि उन्हें परमेश्वर का काम करना सिखाया जाए और वे केवल प्रभु पर ही भरोसा रखें, प्रचारकों पर नहीं। ऐसा देखा गया है कि जितने भी धर्मोपदेश आज तक सुनाए गए हैं उनसे एक ऐसा समूह अभी तक तैयार नहीं हुआ जो स्वयं का इनकार कर सकते हो। इस विषय को अब तक के सबसे गंभीर परिणामों की तरह महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। हमारा भविष्य इसी बात पर पूरी तरह दांव पर लगा है। कलीसियाएं बिखर रही हैं क्योंकि जगत को अपने गुणों से रोशन करने के काम में वे सफल नहीं हो सके। जरूरत है कि सारे निर्देश सावधानी पूर्वक दिए जाएं जो प्रभु यीशु की शिक्षा से सीखे हों, ताकि सभी सच्चाई की रोशनी का व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल करें। लोग बहुत से धर्मोपदेश सुन चुके हैं, किंतु क्या उन्हें यह सिखाया गया है कि उनके लिए क्या किया जाए जिनके लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी? क्या उनके समक्ष एक लक्ष्य रखा गया है, एक समय सीमा की रेखा खींच दी गई है कि वे परमेश्वर के लिए काम करने की आवश्यकता को सही अर्थ में समझें और उस काम में हिस्सा लें? ये शिक्षा और अभ्यास ही के द्वारा संभव है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के अचानक आ पड़ने या आपातकाल का सामना करने के योग्य हों, और एक बुद्धिमानी पूर्ण योजना की आवश्यकता होती है जिसमें हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार सही जगह सही काम करने को दिया जाए, जिससे वह अनुभव प्राप्त करने तथा जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सक्षम हो। कलीसिया मिशनरी पाठ्यक्रम। अनेक लोग कार्य करने को तैयार होंगे यदि उन्हें यह सिखाया जाए कि शुरुआत कैसे करें। उन्हें निर्देशित करने और उत्साहित करने की जरूरत है। हरेक कलीसिया को एक प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए मसीही कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु। उसके सदस्यों को बाइबल पठन करना सिखाना चाहिए, सब्बत स्कूल की कक्षा को चलाना और सब्बत पाठ पढ़ाना, गरीबों की मदद करना, बीमारों की सेवा व देखभाल करना, और जो अभी तक मन नहीं फिराए हैं उनके लिए काम करना, स्वास्थ्य शालाएं, कुकिंग शालाएं तथा मसीही सहायता हेतु विभिन्न क्षेत्र की कक्षाएं होना चाहिए। केवल कुशल प्रशिक्षक द्वारा शिक्षा दिया जाना काफी नहीं, किंतु उस शिक्षा का कार्य रूप में अनुभवी निर्देशकों द्वारा क्रियान्वयन होना चाहिए। शिक्षकों को लोगों के बीच में रहकर कार्य करना एवं निर्देश देना चाहिए, उन्हें एकता में लाना, उनके उदाहरणों से सीखना चाहिए, क्योंकि एक उदाहरण ही कई सलाहों व नियमों से बढ़कर होता है। विशिष्ट प्रशिक्षण। लोगों को स्वास्थ्य सुधार के सिद्धांत सिखाने के बड़े प्रयास करना चाहिए। कुकिंग शालाएं स्थापित होना चाहिए। घर घर जाकर पौष्टिक भोजन बनाने की कला के बारे में निर्देश दिए जाने चाहिए। वृद्ध एवं नौजवान सभी को साधारणतया भोजन बनाना सीखना चाहिए। जब भी सच्चाई प्रस्तुत की जाना हो, लोगों को यह भी सिखाना चाहिए कि भोजन को साधारण होने के साथ साथ स्वादिष्ट और भूख बढ़ाने वाला कैसे बनाया जा सकता है। उन्हें ये दिखाया जाना चाहिए कि पौष्टिक खाना बिना मांस के भी प्राप्त किया जा सकता है। हर जगह जहां कलीसियाएं हैं, वहां लोगों को शरीर को ताकतवर बनाने लायक भोजन साधारण तरीके का प्रयोग करके बनाना सिखाया जाना चाहिए तथा सदस्यों को अपने पड़ोसियों के साथ उस सच की रोशनी को बांटना चाहिए जो उनके भोजन व रोटी से भी संबंध रखती हैं। निर्देश ग्रहण करना। ऐसे कितने उपयोगी और सम्मानित कार्यकर्ता हैं जो प्रभु यीशु के कार्य के लिए प्रशिक्षित हैं, जबकि जीवन की अन्य छोटे कर्तव्यों को करने के लिए छोटा स्थान भी मिला। मूसा मिस्र का आगे होने वाला शासक था, किंतु परमेश्वर उसे राज सिंहासन से उठाकर अपना काम करने के लिए नहीं ला सकता था। केवल 40 वर्ष की आयु में ही उसे एक वफादार चरवाहा होने के नाते परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने का काम सौंपा गया। गिदोन ने भी दहलीज पर काम करने वाला होने पर भी परमेश्वर की इच्छानुसार इजरायली सेना को छुड़ाने का बड़ा काम किया। एलीशा ने भी अपनी खेतीबाड़ी छोड़कर परमेश्वर के कहे अनुसार कार्य किया। आमोस जानवरों की रखवाली करने वाला, भूमि पर की मिट्टी को भुर भुर भुरा करने वाला था, जब परमेश्वर ने उसे सुसमाचार का ऐलान करने का काम दिया। सभी जो प्रभु यीशु के सहयोगी हो गए हैं, तुम्हें बड़ा कठिन व असहिष्णुता भरी मजदूरी करने को कहता है। उनके निर्देशों के पाठ समझदारी से चुने गए होंगे और अपनी एक अलग प्रकार का चारित्रिक गुण लिए हुए और उस काम को जिसे करने का उन्होंने ठान लिया है। प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी। जब वादे के पक्के और योग्य व्यक्तियों के जीवन में बदलाव आता है, जिस प्रकार तिमोथी, पौलुस और बरनवास के जीवन में आया, तब वे पूरी ताकत व ईमानदारी से उन्हें प्रभु की बारी में काम करने की जरूरत को समझा और बना सकते हैं। जब प्रेरित अन्य स्थानों की ओर गए, इन व्यक्तियों का विश्वास डगमगाया नहीं किंतु बढ़ा। उन्हें पूरी वफादारी से प्रभु की राह पर चलने के निर्देश दिए गए और बिना स्वार्थ ईमानदारी से काम करने की पूरी चाह, ना ही उन्हें अपने लोगों को उद्धार पाने का मार्ग बताने में सहायता की। नए विश्वासियों का यह शानदार प्रशिक्षण इनके काम की सफलता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। वह सफलता जो पौलुस और बरनवास को उन अन्य जातियों के देश में सुसमाचार प्रचार कार्य में मिली। जैसे कलीसियाओं की स्थापना होती जाती है, उनके सदस्यों को ये सिखाया जाना चाहिए कि वे सच्चाई जो उन्हें मिली है दूसरों तक पहुंचाएं और नई कलीसिया बनाएं। इसलिए उन सभी को काम करना चाहिए और प्रभु द्वारा दिए गए गुणों को जितना अधिक हो सके बढ़ाना चाहिए। अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह केवल प्रभु की सेवा में लगा रहे। सुसमाचार प्रचार के कार्यक्रमों में लगातार लज्जित होना पड़ रहा है, क्योंकि सही सोच रखने वाले लोगों की कमी है। जिन लोगों में समर्पण एवं धार्मिकता है, वही सही अर्थों में विश्वास को प्रस्तुत करेंगे। कई लोग हैं जो प्रचारक बनना चाहते हैं, किंतु उन्होंने ये काम कभी किया नहीं, और जो लोग चाहें वे कलीसिया से जुड़े हों या कॉलेजों से यह काम करना जानते हैं, वे इन लोगों के साथ मिलकर काम के बोझ को हल्का करना नहीं चाहते, ना ही उन्हें परमेश्वर के अधिकार व सामर्थ्य के बारे में, जो सब लोगों पर है, बताते हैं। यहां तक कि वे न तो उनके साथ और न उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके पास आध्यात्मिक समझ है, उन्हें सभी साधनों व तरीकों को कलीसिया के लिए अवसर प्रदान करने हेतु हर एक सदस्य को कोई न कोई प्रभु का काम सौंपना चाहिए, जिसे वे कर सकें। पिछले समय में ये काम नहीं किया गया है। इसके लिए कोई योजना पहले बनाई ही नहीं गई, ना ही उसके अनुसार कार्य हुआ। अन्यथा सभी प्रकार के प्रबुद्ध लोगों का इस्तेमाल प्रभु की सच्ची सेवा में किया जा सकता था। केवल कुछ लोग ही हैं जो इस बात को महसूस करते हैं और जानते हैं कि इस कारण कितनी हानि हुई है। हरेक कलीसिया में ऐसे प्रशिक्षित सदस्य होने चाहिए जो अपना समय प्रभु के लिए आत्माएं जीतने में लगाएं। कलीसिया के लिए ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जब तक कि कलीसिया का हरेक सदस्य सही में जगत को ज्योति प्रदान नहीं करता। आइए, जिन्हें प्रभु की भेड़ों की रखवाली करने का काम सौंपा गया है, वे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हों और अपने साथ अन्य लोगों को भी कार्य करने दें। प्रशिक्षण हेतु योग्य अधिकारियों का चयन। नई कलीसियाओं के लिए अधिकारियों का चयन बड़ी ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, वे पूरी तरह से प्रभु में विश्वासी हों। उन्हें चुना जाना चाहिए जो निर्देश देने में पूर्णतः योग्य हों और जो वचनों और कार्यों दोनों के द्वारा प्रचार कर सकें। इस काम को हर क्षेत्र में करने की अधिक से अधिक जरूरत है। कलीसिया के प्राचीन और वे जो ऊंचे पदों पर पाए जाते हैं, उन्हें उनकी योजनाओं को पूरा करने के बारे में और अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्हें सारे मामले अपने हाथ में लेकर योजनाबद्ध तरीके से कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को सौंपना चाहिए, ताकि कोई भी बिना उद्देश्य या बिना काम के जीवन न बिताएं, बल्कि अपनी योग्यता अनुसार जितना काम कर सकते हैं करें। ये बहुत जरूरी हो गया है कि हरेक सदस्य को ऐसा वचन सिखाया जाए कि वे प्रभु को समर्पित एवं सुयोग्य एवं निस्वार्थी सेवक बन जाएं। ऐसा तभी संभव है जब एक ऐसा पाठ्यक्रम हो जिससे पूरी कलीसिया फलदायी होती रहे, वो खत्म ना हो जाए। हर व्यक्ति को एक सक्रिय प्रचारक होने की जरूरत है, एक जीवित पत्थर पतरस की तरह प्रभु के भवन में ज्योति चमकाने वाला। कलीसिया के सदस्यों का स्वयं शिक्षित होना। कलीसिया के सदस्यों को काम करना चाहिए, उन्हें पहले स्वयं को शिक्षित करना चाहिए और उनके सामने रखे गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, और इस काम में परमेश्वर उनकी सहायता करेगा यदि वे उसके साथ सहयोग करें। हाथ में आए हर अवसर को हमें अपनी योग्यता अनुसार बखूबी परमेश्वर के वचन का प्रचार किए बिना जाने नहीं देना चाहिए। एक स्वर्गीय स्तर। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पूरी शिक्षा प्राप्त करें। इस बात को ध्यान में रखें कि वही ज्ञान हमें दूसरों को बांटना है। किसी को पता नहीं कि कब और कैसे उन्हें प्रभु का काम करने के लिए बुलाहट होगी कि प्रभु का वचन सुनाया जा सके। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि उसे मनुष्य से क्या करना है। हमारे सामने कई संभावनाएं हैं जो हमारा कमजोर विश्वास उसके बारे में नहीं विचार करता। हमारा मस्तिष्क इतना प्रवीण होना चाहिए कि यदि जरूरत पड़े तो संसार की बड़ी हस्तियों के सामने भी प्रभु का वचन सुनाने के लिए तैयार हों और इस तरह प्रभु की महिमा करें। कौन है जो परमेश्वर के दाख की बारी में जाने और काम करने की तैयारी कर रहा है? प्रभु परमेश्वर नकारा लोगों से खुश नहीं होता। वो हमें सबसे बढ़िया और सर्वोच्च तरीके से उसके द्वारा दिए गए गुणों का इस्तेमाल जितना ज्यादा हो सके उतना करना चाहता है। व्याख्या। मैंने सपना देखा था कि कोई व्यक्ति मेरे पास सफेद कपड़े का जाल सा लेकर आया और मुझसे कहा कि इसके हर किसी के नाप के कपड़े बनाओ, विभिन्न प्रकार के चरित्र एवं विभिन्न प्रकार की जीवन की परिस्थितियों के अनुसार। मुझे कहा गया था कि उन सब प्रकार के नाप के कपड़े काटकर ऊपर टांग दूं, ताकि वे तैयार रहें जब उनकी जरूरत हो। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अनेकों लोग जिनके वस्त्र तैयार करने को मुझे आदेश दिया गया था, वे अयोग्य थे। मैंने पता लगाया कि क्या वो अंतिम कपड़ा था जो मुझे काटना था। मुझे बताया गया कि ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैं इस वस्त्र को तैयार करती, मेरे लिए और वस्त्र तैयार करने का काम बाकी था।
मैं इतना सारा काम देखकर घबरा गई। मैंने कहा कि मैं तो ऐसे वस्त्र बनाने का काम 20 वर्ष पहले से करती रही थी, किंतु मेरी मेहनत को कोई बढ़ावा नहीं मिला था, ना ही मैंने देखा कि मेरे काम से कुछ लाभ हुआ था। मैंने उस व्यक्ति से बात की जिसने कपड़ा लाकर दिया था। वह एक विशेष स्त्री के लिए था जो मुझे काटना था। मैंने कहा, वह स्त्री इस वस्त्र के लायक नहीं है, और ये तो समय का नुकसान और अच्छा कपड़ा नुकसान होगा यदि उसे ये वस्त्र दिया जाता है तो। वह तो बहुत गरीब, कम शिक्षित, असभ्य व्यवहार करने वाली है, जो उस वस्त्र को जल्दी ही गंदा कर देगी। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, तुम्हें ये वस्त्र बनाना होगा, ये तुम्हारा काम है, हानि मेरी होगी, तुम्हारी नहीं। परमेश्वर का तरीका मनुष्य के देखने के तरीके से अलग होता है। वह अपना काम अपने तरीके से करता है, और तुम्हें पता नहीं होता कि कौन सा काम बढ़ेगा, ये वाला और वह वाला। ऐसा होगा कि ऐसे कई गरीब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, जबकि अन्य, जिन्होंने जीवन के आनंद को ज्यादा पसंद किया, सब तरह का बेहतरीन जीवन का लाभ उठाया, यहीं छूट जाएंगे। सैनिक घंटों तक अपने आप को अपने सोने वाले थैले में छुपाने और तुरंत उठकर किसी भी व्यक्ति पर काबू पाने के लिए अभ्यास करते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे उनसे हथियार छीन लें और अपने काबू में कर लें। शत्रु पर हमला करने का भी उन्हें अभ्यास कराया जाता है और इस तरह उन्हें हर तरह के पैंतरे सिखाए और अभ्यास कराए जाते हैं। इस तरह अभ्यास जारी रहता है किसी भी आपातकालीन स्थिति के समय। और क्या वे जो राजकुमार इम्मानुएल की सेना में युद्ध लड़ रहे हैं उतने ईमानदार और कष्ट झेलने वाले होंगे कि वे उस आत्मिक लड़ाई के लिए तैयार हो सकें?